हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब बच्चों। मेरा नाम रुमीजा रब है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं अभी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से बीए ज्योग्राफी कर रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवी की हिंदी की पुस्तक का पाठ दूसरा, नींव की ईंट। इसके कवि हैं रामवृक्ष बैनीपुरी, जिनका जन्म 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 में। तो चलिए पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में व्यतीत करने के साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का कार्य करते रहे। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुरी नामक गांव में हुआ था। उनकी रचनाओं में जेल के अनुभव के साथ साथ देश प्रेम, साहित्य प्रेम, त्याग की महत्ता, साहित्यकारों के प्रति जो सम्मान का भाव दर्शाया गया है, वे अद्भुत हैं। इनकी रचनाएं हैं चिता के फूल, केदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, सीता की माँ। तो बच्चों, ये जो था वो अपने कवि जो पाठ पढ़ेंगे अपन, उनका क्या था, जीवन परिचय था। चलिए आगे अपन पाठ परिचय देखते हैं। ये जान लेते हैं कि कवि इस पाठ के माध्यम से अपन को क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नींव की ईंट निबंध में रामवृक्ष बैनीपुरी जी जहां एक तरफ स्वाधीनता संग्राम में बलिदान होने वाले देशभक्तों का प्रशिक्षित गान गाते हैं, वहीं स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाले लोगों तथा नेताओं की निंदा करते हैं। वे अफसोस जताते हैं, शहरों और कारखानों का नव निर्माण देश के नौजवान ही कर सकते हैं, कोई शासक नहीं। लेखक की ये आशा नव युवकों और विचारों चेतना देने के साथ ही रचना को और समाज की उपयोगी को एक नई दिशा देती है। तो बच्चों, चलिए अपन इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि लेखक अपन को इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। वैसे अपन ने पाठ परिचय में देखा कि लेखक इसमें नवयुवक को एक नए भारत की उसमें बता रहे हैं। जैसे पिछले पाठ में अपन ने पढ़ा था कि जो स्वामी विवेकानंद ने लिखा था उसमें भी नवयुवक की बात थी, यहाँ पर भी नवयुवकों की बात है, लेकिन कुछ अलग तरीके से हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। नींव की ईंट, वे जो चमकती सुंदर इमारत है वे किस पर टिकी है? इसके कंगूरे को आप देखा करते हैं, क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया चमक देखती है, ऊपरी आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य सदा विमम है, किंतु ये हमेशा ही सुंदर रम्य भी हो ये आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जमा करते हैं, दिया करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान ऊपरी चीज देखता है, कोई उस चीज की जड़ को जानना नहीं चाहता है, चीज की जड़ को देखना नहीं चाहता है। जैसे यहाँ कवि उत्तर देते हुए किस चीज़ के बारे में कहते हैं, एक इमारत के बारे में कहते हैं कि इंसान उस इमारत को देखेगा तो उसकी शिखर देखेगा, उसके ऊपरी हिस्सा देखेगा, उसके ऊपरी चीज़ों को देखेगा, लेकिन कभी कोई इंसान ये नहीं सोचता कि उसकी नींव कैसी है। कोई इसके बारे में नहीं सोचता, कोई जड़ों के बारे में नहीं सोचता। हर इंसान ऊपरी वातावरण से प्रभावित होता है और ऊपरी चीज़ों को ही ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि हमेशा ये सच नहीं कि ऊपरी चीज़ ही सुंदरता दिखाए। आप जड़ के बारे में भी तो सोचो, उस नींव के बारे में भी तो सोचना चाहिए बच्चों अपन को, जिसने अपना इतना बड़ा बलिदान दिया है, योगदान दिया है उस चीज़ की बनने में, उस चमकीली इमारत के बनने में। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सच से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते। वे ईंट धन्य है, कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु धन्य है वे ईंट जो जमीन से 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तापन पर सारी इमारत की अस्ति नस्ति निर्भर है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? कवि ये कहना चाहते हैं कि हम कठोरता से भागते हैं, हर इंसान कोमलता देखता है, कठोरता से हर इंसान भागता है, भद्देपन से अपन मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि हर सुंदर चीज मनुष्य का ये ऐसा वातावरण है, मतलब मनुष्य ऐसी हालातों में बड़ा हुआ है कि उसको हमेशा सुंदर चीज ही भाती है, कभी भद्देपन वाली चीज, कभी खराब चीज उसको अच्छी नहीं लग सकती। तो ये क्या है, कभी कहते हैं कि ये सत्य है, हमेशा सुंदरता के पीछे भागते हैं, कठोरता से मुंह मोड़ते हैं, भद्देपन से मनुष्य मुंह मोड़ लेता है। हर इंसान इमारत के गीत गाता है कि वो इमारत, फला इमारत जो है उस जगह में वो बहुत सुंदर है, लेकिन कोई नींव के बारे में नहीं पूछता। जैसे अपन ही बोलते हैं लाल किला बहुत सुंदर है, ताजमहल बहुत सुंदर है, क्या अपन ने सोचा कि उसकी नींव कैसी है? नहीं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये पेज नंबर 9 पे है, अपन नींव की ईंट पढ़ रहे हैं। एक और बार इसमें कवि बताना चाहते हैं कि अपन उस ईंट के बारे में सिर्फ सोचते हैं जिसको मजदूरों ने काट के छाट के कंगूरे पे लगा दिया, लेकिन क्या किसी ने उस ईंट के बारे में सोचा जो जमीन के साथ हाथ नीचे चली गई, गड़ गई, उसने अपने आप को गाड़ दिया और इमारत की पहली ईंट बनी? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस जगह गड़ जाती है तो वो एक मजबूती देगी, पुख्तापन देगी इस इमारत को बनने में, लेकिन कोई उस नींव की ईंट के बारे में नहीं सोचता, जड़ों के बारे में नहीं सोचता। हर इंसान ऊपरी चीज, ऊपरी खूबसूरती से प्रभावित होते हैं। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ जाएगा। कंगूरे के गीत गाने वाले आओ अब नींव के गीत गाएं। तो इससे क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि ये कहना चाहते हैं कि जो कंगूरे की ईंट है उससे हटके अगर अपन ने नींव की ईंट को हिला दिया तो कंगूरा अपने आप धरती पर, जमीन पर गिरे आएगा। और जो हमेशा कंगूरे के बारे में चर्चा करते रहते हैं, उसकी प्रसन्नता करते रहते हैं, आइए हमेशा कंगूरे के बारे में ही नहीं, कभी नींव की ईंट के बारे में अपन जाने, उसके बारे में प्रशंसा करें और उसके बारे में बोलें। कवि ये किससे कहना चाहते हैं? इस समाज को ये संदेश देना चाहते हैं। वे ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वे ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, यदि ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती, किंतु उसने देखा कि इमारत की पायदारी उसकी नींव पर निर्भर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि वो बेचारी एक ईंट जो जाके जमीन में इसलिए गड़ गई ताकि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले, लेकिन कोई उस ईंट के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्यों नहीं सोचता? हमेशा वो कंगूरे की ईंट के बारे में क्यों सोचा जाता है? वो ईंट जो कंगूरे की ईंट से लाख गुना मजबूत थी, अगर वो ऊपर लगी होती तो वो कंगूरे की शोभा और बढ़ा देती, मतलब कि कंगूरे को और खूबसूरत बना देती, और लोग उसे चाहने लगते उस कंगूरे को। लेकिन असल काम किसने किया है? वो नींव की ईंट ने किया है, क्योंकि उसने नींव दी है एक मजबूत इमारत बनाने के लिए, अपना बलिदान दिया है, अपना त्याग दिया है। वे ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर जा सके, वे ईंट जिसने अपने के लिए अपकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, वो ईंट जिसने अपने आप को 100 हाथ 10 हाथ जमीन के नीचे गड़वा दिया, इसलिए गड़वा दिया बच्चों, इसलिए ताकि इमारत आराम से खड़ी हो सके। उस ईंट ने अपने आप को इसलिए भी गड़वा दिया, क्यों? ताकि ऊपर के जो उसके साथी हैं, जो उसकी साथी ऊपर की ईंटें हैं, वो आराम से रह सकें। वे ईंट जिसके ऊपर असिप इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि है, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप मीफ में जाना पड़ता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि हमेशा कुछ सुंदर चीज़ों को अपना बलिदान देना पड़ता है ताकि कोई और लोग हमेशा सुख शांति के साथ जी सके। ऐसे ही इमारत अच्छी बने इसलिए बहुत सी लालीटें अपना बलिदान दे देती हैं, त्याग दे देती हैं और नींव की जगह पे नींव के लिए अपने आप को जमीन से बहुत ही नीचे गड़वा देती हैं। ऐसे ही हमारे समाज में होता है, कुछ अच्छे लोग दूसरों की भलाई के लिए अपना त्याग दे देते हैं, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने दिया, देश के शहीदों ने दिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो आज भी हमारे सैनिक दे रहे हैं सरहद पर। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सहरा पहनना पड़ता है। कवि कहना चाहते हैं एक अच्छा समाज बने जहाँ शांति हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ सब मिलजुल कर रहें, जहाँ कोई जाति का, जहाँ कोई मजहब का भेद नहीं हो। इसलिए कुछ तपे तपाए लोग क्या कर देते हैं, शहादत का लाल सहरा पहन लेते हैं। ये ऐसा ही लाल सहरा और देश का तिरंगा हमारे शहीद पहनते हैं। शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, ये इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि शहादत को उन्हें किससे मिलाया है, शहादत और बलिदान को उन्हें इमारत से मिलाया है। वो क्या, सारा बलिदान और प्रतिष्ठि उन्हें किससे मिला ली, नींव की ईंट। कौन सी नींव की ईंट से, इमारत के कंगूरे वाली नींव की ईंट से। और उन्हें उसको किससे मिला दिया, मंदिर के कलश से। बोलते हैं जैसे कि इमारत का कंगूरा है वैसे ही मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए कि मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाना उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। क्या कहना चाहते हैं ये लोग, कहना चाहते हैं कि हाँ, किसी की शहादत, किसी का चुप रहना ही किसी को महान बना देता है। जैसे कि ईसा, जो ईसा थे, जो भगवान थे ईसाई समाज के, उनकी शहादत ने ईसाई धर्म को क्या बना दिया, अमर बना दिया, ईसाई धर्म को एक नया राह दिखा दी। इसलिए उनकी समझ में, किनकी समझ में, कवि की समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाना का काम था ईसा का, भगवान का, जिन्होंने उस धर्म के प्रचार के लिए और उस धर्म की सुख शांति के लिए, आगे के जीवन के लिए अपने आप की, अपनी खुद की ही बलि चढ़ा दी, अपने आप को त्याग दे दिया, बलिदान कर दिया। चलिए बच्चों, अब आते हैं अपन कौन से पेज पर, 10वें पर, 1010। उसमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक जंतु की भूख प्यास का शिकार हुए। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जिनका कोई सबूत नहीं मिलता, वो अपने आप को त्याग देते हैं, वो अपने आप से हार मान जाते हैं। कैसे हार, कि कितनों को जिंदा जला दिया जाता है, कितनों को फांसी पर लटका दिया जाता है, बल्कि वो सही होते हैं तब भी, कितनों को जंगली जानवरों के हवाले कर दिया जाता है, उन्हें खिला दिया जाते हैं, कितनी भयंकर जो पशु पक्षियां हैं उनकी भूख मिटा दी जाती है एक अच्छे इंसान को खिलाकर। तो ये सब क्या है, सब एक दूसरे की भूख प्यास का शिकार हो गए, सारे अच्छे लोगों का बलिदान हो गए, जैसे कि स्वतंत्रता के वक्त हुआ और आज भी हो रहा है सरहदों पर हमारे वीर जवानों का। किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पूर्ण प्रपात से फल फूल रहा है। ये नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत में चमकते हैं। क्या बोलना चाहते हैं, जैसे ईसा मसीह ने अपना त्याग दिया, अपना बलिदान दिया, अपने आप को सौंप दिया, तो उसके वजह से ईसाई धर्म जो है वो महान हो गया। इसी तरह ईसाई धर्म आज क्यों फल फूल रहा है, उनके जो भगवान थे, ईश्वर थे, ईसा मसीह, उनके ही कारण। क्योंकि उनने किस की तरह काम किया, नींव की ईंट की तरह काम किया। उन्हें किसकी तरह काम किया, गिरजाघर की कलश की तरह काम किया कि अपनी शहादत दे दी। किसके लिए शहादत दी? अपने धर्म के लिए, उनको जो मानते थे उनके लिए। और आज भी वो इस संसार में चमक रहे हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। तो कवि क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? कवि ये कहना चाहते हैं, आज हमारा जो देश आज़ाद हुआ है सिर्फ उनकी वजह से नहीं, जिनने अपना बलिदान दिया और इतिहास में स्थान पा लिया। कुछ वो लोग भी थे जिनने बलिदान दिया लेकिन उनका नाम आया नहीं, उनको दबा दिया गया, उनको ऊपर नहीं आने दिया, उनका भी बलिदान ऐसा ही रह गया, वो एक नींव की ईंट की तरह रह गए। कि उनने भी अपना बलिदान दिया लेकिन उनको कोई आज पूछता नहीं। सिर्फ जो किसका शिखर का कंगूरे की ईंट है, जो बहुत बड़े लोग हैं, उन्हें पूछा जाता है। देश का शायद ही ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसा दैची नहीं हुआ, जिनकी हड्डियों के दान नहीं विदेशी वित्राबुद का नाश किया। कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश में हर देश के नागरिक ने उस समय अपना बलिदान दिया इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के नहीं। नहीं, वो कहते हैं ऐसा कोई कोना नहीं हमारे देश में जहाँ हड्डियाँ नहीं मिले, जहाँ किसी की अस्थियाँ ना मिले, क्योंकि सब ने ही मिलजुल कर बलिदान किया था। सबका एक एक कदम अंग्रेज़ों के खिलाफ था ताकि वो अंग्रेज़ों को एकजुट होकर भगा सके। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, ये है मूल धारण। ढूंढने से सत्य मिलता है, हमारा काम है, धर्म है ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। कवि कहना चाहता है कि हम जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, जैसे कि कंगूरा जो है वो सच नहीं है, नींव की ईंट सच है। हमें ऐसे नींव की ईंटों को खोजना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है, ताकि हम और लोगों को बता सकें, आने वाली पीढ़ियों को बता सकें, आने वाला जो भविष्य हमारे भारत का, उनके जो देशवासी होंगे, वो वहाँ के जो लोग होंगे, उन्हें बचा सकें। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए ही हमें नींव की ईंट चाहिए। कभी कहना चाहते हैं बहुत सालों बाद, बहुत साल गुलामी कर ली हमने अंग्रेज़ों की, उसके बाद हमने एक नया कदम बढ़ाया है, तो हमें नए समाज के निर्माण के लिए, ताकि हमारा समाज एक अच्छी तरीके से चले, हमें नींव की ईंटों को खोजना पड़ेगा, ना कि कंगूरों की ईंटों को। हमें उन जड़ों को पहचानना होगा जो हमारी इमारतों को मजबूती देती है। सिर्फ इमारत खड़ी करके उस शिखर पर जो चीज़ है उसे ही मेहनता हमें नहीं देना है। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, नींव की बनने की कामना लुप्त हो रही है। तो कवि कहना चाहते हैं हर इंसान महान बनना चाहता है, हर इंसान कंगूरा बनना चाहता है, कोई नींव की ईंट नहीं बनना चाहता, कोई एक इंसान को सहारा नहीं देना चाहता, सब महान बनना चाहते हैं। तो कवि इससे क्या दर्शा रहे हैं? अपने देश की दृष्टि बता रहे हैं जो वो नहीं देखना चाहते। हमारा भारत ऐसा महान नहीं बनेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। 7 लाख गांवों का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का निर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशी से दूर हो, दल बंदिरों से अलग। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? जो 7 लाख गांव ऐसे बंजर पड़े हैं, उनका अगर अपन को निर्माण करना है, हजारों शहर जो ऐसे ही पड़े हैं, कारखाने जो ऐसे ही पड़े हैं, अगर उनका निर्माण करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें वो शासन करने वाले नव युवक चाहिए जो कैसे हो, जो चुपचाप अपने आप को खपा दें, जो कभी कंगूरा बनने की कोशिश ना करें, जो हमेशा नींव की ईंट बनने की कोशिश करें, जो शाबाशी से दूर हो, जो शाबाशी के लिए काम ना करें, नाम के लिए काम ना करें, जो सच में कोई भावना रखते हो, जिनके अंदर त्याग की भावना हो, प्रेम की भावना हो, वो लेकर काम करें। ऐसे लोगों को हमारे समाज की ज़रूरत है ताकि हमारा भारत आगे जा सके और अपने फिर से सोने की चिड़िया कहला सके। बच्चों, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की, जिनमें वासना भी ना हो, कभी कामनाओं से दूर, कभी वासनाओं से दूर। उदय के लिए अतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है, देश के नौजवानों को ये चुनौती है। जिनमें कंगूरा बनने की कोई ख्वाहिश ना हो, क्योंकि हमेशा वो नींव की ईंट बनना चाहते हैं, वो कभी नाम और शाबाशी के लिए काम नहीं करते। जिन्हें क्या कलश कहलाने की कोई धुन ना हो, ऐसे लोगों की हमारे देश को ज़रूरत है। और ये हमारे देश के नौजवानों को चुनौती है। ये कौन कह रहा है? ये कवि कह रहा है। कवि कहना चाहता है, आप जो नौजवान हो बच्चों, आप जो सब बैठे हो, वो क्या बनो? नींव की ईंट बनो, ना कि कंगूरे की ईंट। क्योंकि हमारे देश को नींव की ईंट की ज़रूरत है, नाम वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है, काम वाले लोगों की ज़रूरत है। तो इस पाठ से अपन क्या सीखते हैं? इस पाठ से अपन ये सीखते हैं कि अपन को नाम के लिए नहीं, काम के लिए जीना है। जब काम करोगे तो नाम अपने आप हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पे पेज नंबर 10 में ही कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वो आप लोग पढ़ लेना। और उसके बाद अपन प्रश्न करते हैं। प्रश्न कौन से पेज नंबर पे है? 11 पेज नंबर पे। चलो बच्चों, सब 11 पेज नंबर निकालो। यहाँ पे अपन जो कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको अपन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नींव की ईंटों को धन्य क्यों माना गया है? अब इसके पहला जो उत्तर दिए गए हैं बहुत सारे, चार जो आपके पास ऑप्शन है, पहला का लाल रंग होने के कारण, खा सुंदर होने के कारण, गा आधारशिला बनने के कारण, और फिर एक और ठोस होने के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या है? गा आधारशिला बनने के कारण। क्योंकि नींव की ईंट क्या करती है? मजबूती देती है। वो नाम के पीछे नहीं जाती, वो अपने आप को त्याग दे देती है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो अच्छे से ले सकें। तो ये किसकी भावना है? वो नींव की ईंट की भावना है जो वहाँ पर है। दूसरी चीज, सुंदर सृष्टि हमेशा क्या खोजती है? तो इसका उत्तर है बलिदान, क्योंकि वो बलिदान की भावना रखते हैं। तो बच्चों, सेकेंड प्रश्न का उत्तर क्या है? दूसरे प्रश्न का बलिदान। क्योंकि कवि किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बलिदान की। तो किसने दी थी? नींव की ईंट ने, जो उसकी सुंदरता को प्रकट करती है। अगर वही कंगूरे की ईंट की जगह लग जाती तो कंगूरे की सुंदरता को और बढ़ा देती, लेकिन उसने क्या किया? बलिदान दिखाया अपना, दूसरे लोग सुंदर दिख सके, इसलिए वो हजारों हाथ दसों हाथ नीचे दब गई। तो अपन आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न 3, पेज नंबर 11। लेखक के अनुसार देश को आज़ाद कराने का शहर किससे मिलना चाहिए? आप बताइए, किस किस को मिलना चाहिए? उन लोगों को मिलना चाहिए जो नाम के लिए जिनने काम किया, या उनको मिलना चाहिए जिनने सच में बिना नाम के, बिना सारी चीज़ों के काम किया ताकि वो सच में लोगों की सेवा कर सकें? तो लेखक के अनुसार उनको मिलना चाहिए जिनने अपना बलिदान दिया, अपना त्याग दिया, अपना जीवन त्याग दिया, उनको नहीं जिनने सिर्फ नाम के लिए उन्हीं के ऊपर राजनीति की नेता बने और बाकी लोग सिर्फ उनको मिलना चाहिए। जैसे कि नींव की ईंट है, नींव की ईंट जैसे लोगों को मिलना चाहिए जिसने इमारत को बनने में मदद करी, लेकिन इमारत को ऊपर शिखर को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो दिखावे के लिए खड़ी कर दी गई है। अब अपन पढ़ते हैं प्रश्न 14 क्या है। हमें सत्य की खोज के लिए किस और ध्यान देने के लिए लेखक ने प्रेरित किया है? तो लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि सच, अभी अपन ने पढ़ा ना, कौन से पेज पे? पेज नंबर 10 में क्या पढ़ा? यही कि जो सच को जानना, नींव की ईंटों के बारे में खोज करना, ये सब क्या है अपना? ये सब अपना धर्म है। क्यों? अपन अपने धर्म से पीछे नहीं जा सकते। ये अपने लिए एक बहुत ही बड़ा क्या है? काम है कि अपन नींव की ईंटों को खोजें, उन लोगों को खोजें जिनने अपना त्याग दिया, और अपन उनसे प्रेरित हो सकें और आगे के लोगों को और लोगों को बताकर प्रेरित कर सकें। तो ये सब अपना धर्म है। अब आते हैं अपन कौन से प्रश्न में? प्रश्न नंबर 5, पेज नंबर 11। नींव की ईंट और कंगूरा शब्द किन किन लोगों के सूचक हैं? नींव की ईंट और कंगूरा, तो नींव की ईंट से क्या क्या बताया है? एक तो जो अपने लोग थे जिन्हें बलिदान दे दिया आज़ादी के टाइम वो, और कंगूरों से वो नेता जो नाम के लिए काम किए, अपने नाम के लिए पैसों के लिए काम करते रहे। नींव की ईंट से और किस किस को बताया है? नींव की ईंट ईसा मसीह को बताया है, कलश को बताया है मंदिर का। अपन ने पढ़ा ना अभी पाठ में कि इन सब से जैसे ईसा मसीह ने अपना बलिदान दे दिया और ईसाई धर्म को बहुत आगे तक ले गए। उनका बलिदान आज भी माना जाता है, उन्हें आज पूजा जाता है इस धरती पर। तो ये सब क्या है? बलिदान की भावना की वजह से है। तो उन्होंने नींव की ईंट और कंगूरे से बहुत से लोगों को नापा है, जैसे कि नेता हो गए, जैसे कि हमारे वो लोग हो गए जिनने आज़ादी के टाइम अपनी जान दे दी, जैसे कि हमारे युवा हैं वो, उनको नींव की ईंट बनना चाहिए ताकि भारत आगे जाए, उनको कंगूरे की ईंट नहीं बनना चाहिए, उनको नाम के लिए कभी लोगों की शाबाशी के लिए काम नहीं करना चाहिए। ये सब कौन बताना चाहते हैं? सब हमारे महान कवि बताना चाहते हैं, हम सबको दर्शाना चाहते हैं ताकि हम भी एक अच्छे इंसान की तरह अपने आप को बना सके। अब आते हैं अपन प्रश्न 6 पेज नंबर 11। तो ये जो है ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिएगा। अब प्रश्न 7, हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, ये मूल धारणा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा बताइए बच्चों? लेखक ने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। जैसे कंगूरे की ईंट वो दिख रही है, लेकिन क्या वाकई उसने उतना कुछ सहन किया है जितना नींव की ईंट ने किया है? नहीं। तो लेखक के मायने में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, हमको हमेशा सच जानने की कोशिश करते रहना चाहिए, सच के पीछे जाना चाहिए, सच को ढूंढना चाहिए। सच जाना, सच समझना और सच एक दूसरे को बताना हमारा धर्म है। हमेशा ऐसे नींव की ईंटों को खोजना चाहिए जो हमारे समाज को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। उन कंगूरों की ईंटों को नहीं देखना चाहिए, ऊपरी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऊपरी चीज़ हमेशा सत्य नहीं होती। अब प्रश्न 8वें पे आते हैं अपना, पेज नंबर 11। कंगूरा बनने की होड़ा होड़ी मची है, लेखक ने इस कथन के माध्यम से क्या इंगित किया? अब ये तो आज का समाज बच्चों आप देख ही रहे हैं, हर इंसान नाम के लिए काम कर रहा है, एक दूसरे की जान भी ले सकता है, ये झूठ नहीं है। कितने अपन केसेस देख रहे हैं, रोज अखबार में समाचार पत्र में आते हैं ना ऐसे खबरें, पैसों के लिए, नाम के लिए, काम के लिए लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। पीछे की उसमें नहीं जाना, अपन को अभी के उसमें जीना है। तो हमें पीछे की उसमें नहीं देखना, हमें क्या देखना है? आज की दुनिया में क्या हो रहा है, फिर उसके हिसाब से अपने आप को धारण करना है, संभालना है। तो आज में क्या हो रहा है, यही अपन रोज समाचार पत्र में देखते हैं, कैसे लोग नाम के लिए, काम के लिए, और मेन चीज़ तो पैसा, पैसे के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है। तो ये सब क्या है? ये सब लालसीपन है, ये सब क्या है? कंगूरा बनने की कोशिश है। कोई नींव की ईंट नहीं बनना चाहता, सिर्फ नाम के लिए, बंगले के लिए, पैसे के लिए इंसान काम करता है। तो क्या कवि ये कहना चाहते हैं कि हर तरफ क्या है? होड़ मची हुई है, हर इंसान कंगूरा बनना चाहता है, कोई नींव की ईंट के बारे में सोचता भी नहीं है। तो चलिए बच्चों अब अपन पढ़ते हैं कौन सा प्रश्न, 9वां, पेज नंबर 11। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। सुंदर सृष्टि, तो ये हमारे कवि जी इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि हर सुंदर चीज अपना बलिदान दे देती है, ये बिना सोचे कि उससे अच्छा हो या, क्योंकि हमेशा बलिदान फायदेमंद होता है। जैसे एक बहुत ही सुंदर जो ईंट थी, कहाँ पे थी? नींव की ईंट जो थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, अगर वही कंगूरे पे लग जाती तो क्या कर देती? कंगूरे की जो सुंदरता थी उसे 100 गुना बढ़ा देती, लेकिन उसने क्या किया? बलिदान सोचा, दूसरों के लिए अच्छा सोचा, ताकि दूसरे लोग वो चीज़ ना सहन करें, उस चीज़ से ना गुजरें जिससे वो गुजर रही है 10 हाथ नीचे। तो उसने अपना क्या कर दिया? उसने अपना बलिदान दे दिया। तो ये बलिदान इसलिए वो बता रहे हैं, कभी कहना चाहते हैं हमेशा जो सुंदर चीज़ होती वो अपना बलिदान दे देती है, ये नहीं सोचती कि वो मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, वो चीज़ मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। जो इंसान अपने आप में बिना सोचे दूसरों की सेवा करता है, बलिदान की भावना रखता है, वो क्या है? सुंदर इंसान है कवि के लिए। जैसे कि वो युवा जो बिना शाबाशी के लिए, बिना क्या बनने के लिए, शिखर बनने के लिए दूसरों की सेवा करें, दिन रात काम में लगे रहे, वो क्या है? वो क्या दर्शाता है? उनके बलिदान और सुंदरता की भावना को दर्शाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11, ये निबंध लेखक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ और बाकी आप लोग लिखना। ओके बच्चों, उदय के लिए अतुल हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? कथन के आलोक में वर्तमान में समाज की युवाओं से क्या अपेक्षा है, स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कवि? कवि बोलना चाह रहे हैं कि उदय के लिए अतुल हमारा समाज चिल्ला रहा, उन लोगों की जरूरत है हमें जो कैसे हो, जो निस्वार्थ भाव के हों, निस्वार्थी हों, जो कभी शिखर पर ना जाने की सोचे, जो हमेशा नींव में रहकर, जड़ों में रह के लोगों की क्या करें, मदद करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, नींव की ईंट बने। तो ऐसा कवि का कहना है कि वर्तमान में ऐसे युवाओं की हमें ज़रूरत है और हम ताकि हमारे भारत को आगे ले जा सकें, सोने की चिड़िया बना सकें, ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, ऐसे नवयुवकों की ज़रूरत है जो आगे आए। तो आप अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से, जो समाचार पत्र में आप सब पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे उदाहरण इसमें दे सकते हैं। जैसे कि अपने कुछ अच्छे अच्छे नेता हैं जो निस्वार्थ से काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, अपनी सरकार है, कुछ बहुत अच्छे अच्छे खेती बाड़ी में है, कुछ स्वास्थ्य केंद्र में, ऐसे सब अलग अलग केंद्र में जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उनके बारे में अपन इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 11, पेज 11। नींव की ईंट पाठ के आधार पर नींव की ईंट के लक्ष्यात को स्पष्ट कीजिए। अब ये तो मेन चीज़ आ गई, जो चैप्टर है उसी पर पूछ लिया, जो पूरा अपन ने पाठ पढ़ा उसी पर पूछ लिया। तो नींव की ईंट के आधार पर नींव की ईंट की लक्ष्यात को स्पष्ट करना है। तो अपन बता सकते हैं कि नींव की ईंट चैप्टर बहुत ही प्रमुख चैप्टर जो हमारे कवि जी ने लिखा है, उसके बारे में क्या बताया है, उन जड़ों के बारे में बताया है, उन चीज़ों के बारे में बताया है जिनको कभी समाज देखता नहीं है, समाज हमेशा नीचे रखता है, उसके बारे में कभी सोचता भी नहीं है। लेकिन हमको सोचना चाहिए, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, और लोगों को भी बताना चाहिए। क्योंकि क्या है, जब तक अपन नींव की ईंट के बारे में नहीं बता जानेंगे, तब तक अपन ये नहीं जान सकते कि वो शिखर कैसे खड़ा हुआ है। अगर शिखर इतना सुंदर है तो नींव की ईंट कितनी सुंदर होगी। जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो बहुत अंदर तक होती हैं मिट्टी में, लेकिन हर इंसान पेड़ को देखता है, कोई जड़ों को नहीं देखता। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो जड़ें हैं जो उसे खाना पानी देती है, वो मिट्टी के अंदर इतनी नीचे गड़ी हुई है, अपने जीवन को त्याग दे रही है, तभी तो एक अच्छा खूबसूरत फूल फल इस पेड़ में आ रहे हैं। ये सारे अपन के अंदर भाव होना चाहिए, ये अपन को सोचना चाहिए कि नींव की ईंट बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें क्या क्या लिखोगे नींव की ईंट के बारे में और बाकी चीज़ें जो अपन ने पाठ में पढ़ी और समझी। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये पाठ समझ में आया हो, नींव की ईंट, और आपको इसका उद्देश्य भी पता चल गया हो कि कवि जो हमारे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, कि अपन को हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना है, जैसे कि नींव की ईंट करती है, ना कि शिखर की ईंट की तरह सिर्फ ऊपर रहना है और बिना कुछ करे ही सबकी नज़रों में आना है। क्यों? क्योंकि हमें, आप जो सब बच्चे यहाँ बैठे हो वो क्या हैं, भारत का आने वाला भविष्य है। तो आपके हाथों हमारे भारत का भविष्य है, तो अगर आप चाहें तो इस भारत को एक नई उन्नति की राह पर ले जा सकते हैं, इसको फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा, बाय, धन्यवाद।